हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत के 14वें सत्र में, और सभी भक्तों को हनुमान जन्मोत्सव की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो हम चैतन्य चरितामृत मध्यलीला चर्चा कर रहे हैं, पहले दो अध्यायों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से सारांश कविराज गोस्वामी ने बताया है संपूर्ण शेष लीला का। तीसरे अध्याय में महाप्रभु अद्वैताचार्य इनके घर पर है शांतिपुर में। चौथे अध्याय में माधवेंद्रपुरी, इनकी भक्ति की महानता, गोपाल जी का प्राकट्य और खीरचोर गोपीनाथ, इनका वृत्तांत आता है। पांचवें अध्याय में साक्षी गोपाल, इनका वृत्तांत आता है। छठे अध्याय में महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पहुँच जाते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य इनका उद्धार करते हैं। सातवें अध्याय में महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा प्रारंभ करते हैं, काल कृष्ण उनके साथ में सेवक के रूप में जा रहा है। महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण का उद्धार करते हैं सातवें अध्याय में। उसके पश्चात वासुदेव विप्र, जिसे कुष्ठरोग हुआ था, उसके सारे शरीर में कीड़े थे, लेकिन वो दयावश उनको गिरने के बाद भी ऊपर उठा देता था। महाप्रभु उनको आलिंगन करके उनका कुष्ठरोग दूर कर देते हैं। नष्ट कुष्टम रूप पुष्टम भक्ति तुष्टम चकार। और इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बताया था कि आप जाएंगे दक्षिण भारत यात्रा में, तब रामानंद राय से मिलना। तो इस प्रकार से हमने आठवें अध्याय में देखा, जिसका शीर्षक था राय रामानंद संवाद। इसमें महाप्रभु ने अलग अलग प्रश्न रामानंद राय से किए थे और उसके जवाब रामानंद राय ने किए बताए। और जो हम देखे कि सर्वप्रथम रामानंद राय को प्रश्न पूछते महाप्रभु साध्य के बारे में, सर्वश्रेष्ठ साध्य क्या है, और उसके अलग अलग स्तर पे रामानंद राय जवाब देते हैं। उसके पश्चात साधन के बारे में महाप्रभु पूछते हैं कि सर्वश्रेष्ठ साधन बताइए, और उसमें फिर रागानुगा भक्ति के बारे में रामानंद राय बताते हैं कि गोपियों की कृपा यदि नहीं होती तो कोई व्यक्ति भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकता। और ये प्रश्न किसी के मन में यदि उपस्थित हुआ होगा कि हम तो साधना भक्ति इसका पालन करते हैं, और रामानंद राय इन्होंने तो रागानुग भक्ति के बारे में कहा था और गोपियों के अनुगत उनके चरण कमलों पर चलने के लिए कहा था, तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि उनके चरण कमलों पर चलना इसका अर्थ यह नहीं है कि गोपी जैसे वेश धारण करना, जैसे गोपी वेश धारण कर लिया तो ये सहजिया बन जाता है। तो उनका अनुगत्य करना, उनके चरण चिन्हों का पालन करना का अर्थ होता है उनके उपदेशों का पालन करना। और जैसे हमें पता है कि हमारा एक होता है साधक देह और दूसरा होता है सिद्ध देह। साधक देह जिसमें हम लोग साधना करते हैं, जो हमारा अभी 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 हमारा जो देह है उसे कहते हैं साधक देह, और सिद्ध देह उस देह को कहते हैं जिसमें हम लोग भगवान की निर्विघ्न रूप से सेवा करते हैं, जो आध्यात्मिक संसार में हमें प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से सारे भगवान के पार्षद उनके सिद्ध देह में भगवान की मंजिरियों के भाव में सेवा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका एक साधक देह इस धरातल पर अवतरित होता है। जैसे रूप गोस्वामी इस धरातल पर साधक के रूप में प्रकट होते हैं और उनका सिद्ध देह होता है रूप मंजिरी, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से रामानंद राय वो भी आध्यात्मिक संसार के सिद्ध रूप में एक मंजिरी के भाव में भगवान की सेवा करते हैं मंजिरी के रूप में, लेकिन वो साधक के देह में रामानंद राय के रूप में हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए। और इसी प्रकार से जो अंतिम उनका जो संवाद में जो अलग अलग प्रश्न पूछते थे, तो एक होमवर्क मैं आपको देना चाहूँगा, घर बैठे बैठे ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। जो भी प्रश्न महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछे थे, उन प्रश्नों के स्वयं के जवाब क्या है वो उसके बारे में थोड़ा हृदय के अंदर झांक के सही जवाब, व्हाट इज द फर्स्ट आंसर आई एम गेटिंग। महाप्रभु ने पूछा था कि सारे दुखों में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो हम अंदर झांक के देखते कि मेरे लिए यदि कोई मुझे यह प्रश्न पूछे कि सबसे बड़ा दुख क्या होगा, तो उसका जवाब हमें लिखना है। और उसके पश्चात रामानंद राय ने जो जवाब दिया है उस जवाब की ओर हमें जाना है कि क्या जवाब रामानंद राय इन्होंने दिया है। तो रामानंद राय ने जवाब दिया है, सबसे बड़ा दुख क्या है, भक्तों से विरह होना, यह सबसे बड़ा दुख है। महाप्रभु ने प्रश्न पूछा था सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, तो हमें भी हमारे हृदय के अंदर झांक कर जो सबसे पहला जवाब मेरा आ रहा है, व्हाट इज माय फर्स्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, मेरा पहला जवाब क्या होता है इसके लिए। सबसे बड़ी संपत्ति, जैसे हमने कल कहा था, कोई बड़ा बैंक बैलेंस है सबसे बड़ी संपत्ति या और कुछ है? रामानंद राय ने जवाब दिया था कि भक्ति हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो यदि हम लोग हमारी भक्ति को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, तो जैसे इस भौतिक संसार में हम लोग हमारी संपत्ति जो भी है, धन संपत्ति, तो उसको वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। जैसा आश्रम में कुछ समय के लिए हमें यह सेवा थी कि बाहर जाके DTP करा के हम लोग पोस्टर्स बनाते थे, अभी तो हमारे भक्त ही सब बनाते हैं। तो एक DTP वाले के पास मैं जाता था, तो वो DTP डिज़ाइन करता था, डिज़ाइन बना रहा है स्क्रीन के ऊपर, और बीच बीच में तुरंत वो दूसरी विंडो में जाके देखता था, जब तक मैं कुछ अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद कर रहा होता हूँ या कुछ करता है, तो वो तुरंत दूसरे वेबसाइट पे जाता है और वो शेयर मार्केट का स्कोर देखता रहता है हमेशा, कितना हर एक मिनट के बाद लगभग वो देखता था। तो मतलब उतनी उसको चिंता थी कि मेरी पैसे की वृद्धि कैसे हो। तो उस प्रकार से हमारे लिए संपत्ति क्या है, एक पहला प्रश्न का उत्तर देना, और दूसरा है कि यदि भक्ति हमारी संपत्ति है, जैसे रामानंद राय ने जवाब दिया है, उसकी वृद्धि के लिए मैं क्या प्रयास कर रहा हूं। तो जो जिस चीज को हम लोग संपत्ति मानेंगे, उसी के वृद्धि के बारे में हम लोग सोचेंगे, है कि नहीं, और जिसको विपत्ति मानते हैं उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यदि बीमारी मेरी विपत्ति है, तो मैं बीमारी से दूर जाना चाहूंगा, और धन संपत्ति मेरी असली संपत्ति मानता हूं, तो उसकी वृद्धि का मैं प्रयास करूंगा। तो मेरा सबसे बड़ा विपत्ति, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा संकट यदि भक्तों से विरह है, तो मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा, ये न कि न प्रकार फिर मैं भक्तों के साथ संपर्क, उनका संग लेने का प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी संपत्ति यदि मैं भक्ति को मानता हूँ, तो मैं भक्ति की संपत्ति को वृद्धि करने के लिए मैं क्या क्या प्रयास कर रहा हूँ। तो ये हम स्वयं जो है वो अपने अंदर झांक कर इन प्रश्नों के जवाब लिख सकते हैं। ये हो गया पहला होमवर्क, और दूसरा ये प्रामाणिक रूप से रखना है और आपके पास ही रखना है। रामानंद राय ने जवाब दिए हुए ये ऐसा है कि इस प्रश्न का जवाब ये दिया है रामानंद राय ने, उसको 100 मार्क्स मिले हैं, और हम जो प्रश्न का उत्तर देंगे, तो हमें उसकी तुलना में देखना है कि मैं स्वयं कितने मार्क्स दूंगा मेरे जवाब को रामानंद राय के जवाब की तुलना में। 0 से लेकर 100 तक कितने भी नंबर उसमें मिल सकते हैं। और हमें याद रखना है कि यदि हमें सही में भगवत धाम जाना है, तो वहां पर पासिंग का परसेंटेज 100 है। हम लोग रखते हैं ना, अलग अलग कंटेस्ट रखते हैं, उसमें पासिंग परसेंटेज भक्त पूछते हैं CCC के लिए पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो हम कहते हैं 50% पासिंग मार्क्स है, 50% मिल जाएंगे तो पास हो जाएंगे। हम लोग 10वीं में थे 96 में, तो 35 पासिंग परसेंटेज हुआ करते थे। इंजीनियरिंग में 40 मार्क्स थे पासिंग के लिए। जब हम भक्ति शास्त्री परीक्षा दिए, उसमें 65% थे पासिंग मार्क्स। तो इस प्रकार से पासिंग मार्क्स जो है वो बढ़ोतरी होती गई। 10वीं में 35%, इंजीनियरिंग में 40%, भक्ति शास्त्री भक्ति में आने के बाद 65%, लेकिन भगवत धाम में यदि प्रवेश चाहिए तो उसका पासिंग परसेंटेज है 100%। जब उतना बन जाएगा 100, तभी हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि मैं कौन से स्तर पर हूँ पहले, और फिर आइडियल स्तर क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ स्तर, वो दर्जा, वो हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद प्रयासों में लग जाना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये हो गया पहला होमवर्क। और दूसरा होमवर्क, अभी हम लोग केवल ये समर स्टडी ले रहे चैतन्य चरितामृत का, इसमें हम लोग बिल्कुल शिक्षाओं के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने कल ये चर्चा की थी, महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में जाते 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 आगे गए थे, 9वां अध्याय हमने प्रारंभ किया था महाप्रभु का दक्षिण भ्रमण, और कई जगह जाके महाप्रभु अंत में जब श्रीरंग क्षेत्र में उस ब्राह्मण को मिलते हैं जो गीता पढ़ रहा था, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी, तो उसमें हमने एक भी लेसन नहीं दिया है कि क्या हम लोग सीख सकते हैं। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि ऐसे जो भी अलग अलग पास टाइम्स भक्तों के साथ महाप्रभु के चल रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें तो नोट्स निकालने का ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि केवल लीला चल रही है, लेकिन इसमें भी आप फ्लो तो लिख ही सकते हैं कि कौन कौन भक्त कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार से एटिनररी है महाप्रभु की। कहाँ किसे मिले, किसके साथ वार्तालाप किया, किसको डिफीट किया, जैसे हमने देखा था बौद्धिक तर्कवादियों को भी महाप्रभु ने डिफीट किया था, और महाप्रभु ने जैसे उनको डिफीट कर दिया और लोग हंसने लगे, तो वहां पर क्या होता है, वो बुद्धिस्ट आचार्य जो है वहां पर एक बड़ा पक्षी आ जाता है, पक्षी सब खाद्य अमेद्य खाद्य उठा लेता है और थैली जो थाली थी वो उस आचार्य के सर पे ऊपर मार देता है। महाप्रभु फिर जो शरणागत आए थे भक्त उनको कहते कि उनके कान में जाके कृष्ण कहो, और फिर वो कृष्ण कहते वो उड़ जाते नाचने लगते हैं। तो ऐसे अलग अलग लीलाएं हम लोग बता रहे हैं, उसमें आप लोग कर सकते हैं कि इससे हमारे लिए क्या सीखने को मिलता है। इसे कहते हैं स्वयं प्रज्ञा। स्वयं प्रज्ञा का अर्थ हुआ है कि हमारी स्वयं की सोच से ढूंढ निकालना कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं और क्या संकल्प करना चाहिए मुझे वो चीज करने के लिए। जैसे हमने ये पास टाइम लिया था, वो गीता पढ़ने वाला अनपढ़ ब्राह्मण, तो बाकी सब लोग उससे उसकी तरफ निंदा कर रहे थे, कोई आलोचना कर रहा था, लेकिन उसने बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वो अपना गीता पढ़ रहे थे। तो उस प्रकार से हम लोग उसमें सीख सकते हैं कि कई लोग हमें कुछ भी क्यों ताने ना मारे हमारी भक्ति के कार्यों को लेके, हम लोग हमारी भक्ति करते रहेंगे। और उसे महाप्रभु की कृपा क्यों प्राप्त हो गई, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था। तो उस प्रकार से गुरु की आज्ञा हमें पालन करनी चाहिए, उसके लिए हम लोग कितना सतर्क है वो हम लोग एक शिक्षा रख सकते हैं लिख के, और हम लोग देख सकते हैं कि उस वो ब्राह्मण, उसकी उतनी श्रद्धा थी भगवद गीता के ऊपर कि भगवान कृष्ण यहाँ पर रस्सी खींचते हुए भक्तवत्सलता गुण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो भगवान की भक्तवत्सलता का गुण यहाँ पर आता है। और जो भगवद गीता में भी हम लोग देखते हैं पहले अध्याय में, और खास करके जब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, सेनय और उभय और मध्य रथम स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितान, हे अच्युत मेरा रथ थोड़ा सेना के बीच में लेके जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने के लिए यहाँ पे उत्सुक है। तो जो वहां पर उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि यहाँ पे भक्तवत्सलता का गुण भगवान का प्रकट हो रहा है। तो ऐसे जो भक्तवत्सलता का गुण हमें हम देख सकते हैं इस एक्सरसाइज में कि कहाँ कहाँ हमें अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह पर प्रकट किया है भगवान ने भक्तवत्सलता गुण। ये तो अर्जुन का उदाहरण हो गया, और कहाँ कहाँ पर मिला है भक्तवत्सलता का गुण, और ये भक्तवत्सलता का गुण को मैं कितना समझ पा रहा हूँ मेरे जीवन में, निजी जीवन में, उसका भी हम लोग जो है वो वर्णन कर सकते हैं। तो ऐसे 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 जो है वो, और छोटे छोटे पास टाइम से ऐसे बंगाली पढ़ सकते हैं, और मैंने आपको तो पहले ही बताया कि जो हमारा सत्र चल रहा है आप उसे सुनिए, छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, और बाद में जाके पुस्तक रख के पुस्तक के साथ फ्लो में उसे पढ़िए आप। तो जब पढ़ेंगे तो और उसके अंदर से आपको आस्वादन प्राप्त होगा, क्योंकि बंगाली पढ़ेंगे, हिंदी या अंग्रेजी मराठी जो भी है अनुवाद पढ़ेंगे, तो आपको फ्लो समझ में आएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, और उसमें फिर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि मैं इससे क्या सीख रहा हूँ या एक साधक ने इससे क्या सीखना चाहिए। क्योंकि शास्त्र एक उपनिषद में वर्णन आता है, और खास करके सुभाषित भी ऐसा बताया गया है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रः तस्य करोति किम् लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम् किम् करिष्यसि। वो प्रश्न पूछते हैं कि यस्य न अस्ति स्वयं प्रज्ञा, जो स्वयं प्रज्ञा मैं बता रहा था, जिस व्यक्ति को स्वयं प्रज्ञा नहीं है शास्त्र तस्य करोति किम, शास्त्र उसको क्या करेंगे, उसके क्या काम के। स्वयं प्रज्ञा से हमें उसका विवेचन करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसे जीवन में लाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये हो गया स्वयं प्रज्ञा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, जिस व्यक्ति के पास स्वयं प्रज्ञा नहीं है शास्त्र उस व्यक्ति के लिए कुछ काम के नहीं। और उदाहरण देते हैं, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यसि। लोचन का अर्थ होता है आंखें, भगवान का नाम है कमल लोचन, जैसे कमल जैसी आंखें। लोचनाभ्याम विहीनस्य, जिस व्यक्ति को दोनों आंखें नहीं है मतलब अंधा है, उस व्यक्ति को दर्पण दिखा के क्या फायदा। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यसि, उसको दर्पण क्या काम का। जिस प्रकार से अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण कुछ काम का नहीं होता है, उसी प्रकार से स्वयं प्रज्ञा जिस व्यक्ति के पास नहीं है उस व्यक्ति के लिए शास्त्र कुछ काम का नहीं होता है, ऐसा ऐसा बताया गया है। तो इसलिए मैं ये होमवर्क आपको देना चाहूंगा, ये दो होमवर्क मैं बता रहा हूँ, रामानंद राय को जो प्रश्न पूछे थे महाप्रभु ने, खास करके जो आखिर में 244 से लेकर 260 तक श्लोक नंबर, अध्याय आठवां रामानंद राय संवाद, और श्लोक क्रमांक 244 से लेकर 260, 244 to 260, इसमें जो प्रश्न पूछे थे उनके स्वयं के जवाब लिखना, और जो अलग अलग छोटे छोटे पास टाइम्स हम लोग लिख रहे हैं, कूर्म ब्राह्मण का उद्धार किया, वासुदेव लेपर का उद्धार किया, और जो बुद्धिस्ट तात्विक थे उनका उद्धार किया, गीता पढ़ने वाला आड़ानी ब्राह्मण था उसका उद्धार किया, तो इसमें से हम लोग एक जनरल क्या क्या हम लोग सोच सकते हैं, कितनी सीख हम लोग उसमें से ले सकते हैं। तो यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारा जो अध्ययन है वो और गाढ़ा और रसपूर्ण और फायदेमंद जो है वो हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं अभी कि मध्यलीला का अध्ययन महाप्रभु श्रीरंगम में है, और श्रीरंगम में महाप्रभु ने उस गीता पढ़ने वाले ब्राह्मण का जो है वो उद्धार किया है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। और हाँ, खास करके क्यों ये स्वयं प्रज्ञा की बात मेरे याद में आई, क्योंकि ये हमें हमारे अंदर झांकने के लिए मजबूर करता है, देखने के लिए कि अंदर झांक के देखो। जैसे आज हनुमान जन्मोत्सव है ना, हनुमान जी भी अपने हृदय के अंदर झांक के देख रहे थे, तो छाती जब फोड़े थे तो उन्हें राम और सीता इनकी तस्वीर मिली थी। तो इस प्रकार से हम भी अंदर झांक के देखेंगे तो हमें क्या मिलता है वो हमें 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 ढूंढते रहना चाहिए। कि जैसे राधा रानी देखती ना, यहाँ वहाँ दिखती है। देखिए, सारे शुद्ध भक्तों का एक ही लक्षण हमें दिखाई पड़ेगा, कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, यहाँ यहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी है श्रीमती राधारानी, कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, जिनके अंदर भी कृष्ण है और बाहर भी कृष्ण है। वैसे हनुमान जी हम लोग देखते हैं जिनके अंदर भी प्रभु श्री राम है और बाहर भी श्री राम है, वही सेम गुण। यहाँ यहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, श्रीमती राधारानी को कृष्ण का स्फुरन होता है जहाँ जहाँ नेत्र पड़ते हैं, और वैसे हनुमान जी को जहाँ जहाँ नेत्र पड़ते हैं वहाँ पर प्रभु राम का स्मरण होता है। उसी प्रकार से जब लंका में हनुमान जी जाते हैं एक ब्रह्मचारी, और जब सीता की खोज करनी होती है तो रावण के अलग अलग महलों में अलग अलग घरों में अलग अलग कमरों में जाके वो जब देखते हैं कि ये सीता है क्या, ये सीता है क्या, तो वो अलग अलग महिलाओं को उस अवस्था में देखते हैं रात्रि के समय में, तो उनके मन में संभ्रम उत्पन्न हो जाता है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो अचानक से फिर उनके मन में स्मरण आता है कि मैं प्रभु राम जी की सेवा में हूँ, तो ये काम का विचार मेरे मन में आता ही नहीं है, आ ही नहीं सकता। तो जहाँ पे राम है वहाँ काम का कुछ निवास हो नहीं सकता। तो जहाँ इसलिए इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, हनुमान जी भी राम जी का स्मरण करते हैं, राधारानी कृष्ण का स्मरण करती है। तो ये शुद्ध भक्तों के लक्षण होते हैं, अंदर और बाहर वो झांकते तब उन्हें भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से अंदर झांकने के लिए भगवान कृष्ण भी कई जगह इस प्रकार से अपने अपने अंदर झांकने के लिए कहे हैं। और एक खास करके जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें यह सुअवसर हमें प्राप्त हो सकता है कि हम लोग अंदर झांक के देखें, क्योंकि हम लोग कई बार आउटवर्ड जर्नी हमारा होता है, बाहर बाहर की तरफ हमारा झुका होता है कि मेरे स्टेटस को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, मैं कितने लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ, कितने लोग मेरी सराहना कर रहे हैं, ये बाहरी तौर में हमारा भाव ज़्यादा होता है। अंदर अंतरंग में बहुत कम हमारा जो है वो भाव होता है, जिसे कहते हैं अंतरंग यात्रा। तो वो यात्रा हम थोड़ी सी करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भी गीता में कहते हैं, यो अंत सुखोंतरा रामस तथांतर ज्योतिरेवय सो योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदिगच्छति। उस व्यक्ति को ब्रह्म भूत कहा गया है, पांचवें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवदगीता के भगवान कृष्ण ने बताते हैं कि जिस जो सुख अंदर ढूंढता है, जो 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 अंतर ज्योति के दिशा में प्रवेश करता है, सारा अंतर 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 आराम अंदर ही आनंद ढूंढता है, इस प्रकार से भगवान कृष्ण वहां पर बताए है। और जो जो बाह्य है, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, उस बाह्य स्पर्श से व्यक्ति अनासक्त होता है, विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अक्षय सुख की प्राप्ति वह व्यक्ति कर सकता है जो इस प्रकार से अंतरंग में झांक के आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो अंतरंग में झांकना मतलब इसका अर्थ नहीं कि आप भी कुर्ता फाड़ के देखो अंदर क्या है, जैसे हनुमान जी का है तस्वीर। अंतरंग का अर्थ है कि जो मैंने बताया कि रामानंद राय को जो प्रश्न महाप्रभु ने पूछे, उनके मैं क्या जवाब देता हूँ, वो हमारा अंतरंग में झांकने के जैसा है। और सही में वो जो है वो हमारे हमारे सामने एक मिरर प्रस्तुत करता है, कि एक आईना देता है हमारे सामने कि क्या कहाँ पर मैं हूँ और आइडियल मुझे कहाँ पर जो है वो होना चाहिए। तो इसके लिए जो है ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज सारा जग आउटवर्ड दिशा की ओर जा रहा है, अंतरंग में कोई जाने के लिए नहीं कहता। और सब 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 आउटवर्ड 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 इतना ही, और उसमें ही इतना 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 जो है वो हमारा समय चला जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो अभी महाप्रभु श्रीरंगम में है, श्रीरंगम हम सब जानते हैं, वहां पर वेंकट भट्ट इनको महाप्रभु मिले और उनके साथ मित्रता बन गई। चातुर्मास का समय था, 4 महीने तक महाप्रभु श्रीरंगम स्थान में ही रुकते हैं। तो श्रीरंगम में जो है वहां पर श्री संप्रदाय का बाहुल्य है और खास करके वेंकट भट्ट रामानुज इनके अनुयायी थे, रामानुजाचार्य इनके फॉलोअर्स थे, तो वहां पर लक्ष्मीनारायण इनकी उपासना होती है। तो एक बार ऐसे ही बात करते करते महाप्रभु वेंकट भट्ट से बात करते करते कहते हैं कि तुम लक्ष्मीनारायण इनके उपासक हो, लक्ष्मी तो सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है, ऐसी मानी जाती है, सब पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ है, और मैं तो उनका सेवक हूं जो हमारे गोपाल कृष्ण है, जो गायों को चराते हैं वो गोपाल, उनका मैं सेवक हूं और वो हमारे स्वामी है, लेकिन मैं देखता हूं तुम्हारी लक्ष्मी वो इन गोपाल के संग करना चाहती है, ये पतिव्रता होके भी, नारायण की पत्नी होके भी ये गोपाल कृष्ण के पीछे क्यों जाना चाहती है, ये ऐसी कौन सी पतिव्रता है, ये प्रश्न का उत्तर दो। तो बहुत सुंदर यह चर्चा है। वेंकट भट्ट जवाब देते हुए कहते हैं कि देखो, वेंकट भट्ट कहते हैं कि लक्ष्मी और नारायण तो एक ही है, सॉरी लक्ष्मी नारायण नहीं, कृष्ण और नारायण दोनों एक ही है, केवल कृष्ण का रस आस्वादन थोड़ा अधिक है। फिर महाप्रभु पूछते हैं कि देखो, लक्ष्मी ने कृष्ण के साथ रासलीला में नृत्य करने के लिए तपस्या की थी, आप तो मानते होंगे, इसमें भागवत के श्लोक कोट करते महाप्रभु कि लक्ष्मी ने भी जो है वो रासलीला में प्रवेश करना चाहा, लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि देखो श्रुतिगण कुछ थे, उन्होंने भी तपस्या की, गोपियों की आराधना की, उन्हें रासलीला में प्रवेश मिल गया, लेकिन लक्ष्मी को रासलीला में प्रवेश वर्जित था, इसका क्या जवाब है आपके पास। फिर वल्लभ भट्ट महाप्रभु को शरण जाते, महाप्रभु को कहते कि देखो मैं एक छोटा सा जीव हूं, कुछ मैं अधिक जानता नहीं हूं, आप ही जो है वो इसका खुलासा करें। तो महाप्रभु बताना प्रारंभ करते हैं कि देखो कृष्ण सर्वाकर्षक है और सबके मन को वो हरण कर लेते हैं, यदि भगवान कृष्ण की लीलाओं में किसी को प्रवेश करना है तो उस व्यक्ति को चाहिए कि व्रज के जो भक्त है उनका भाव को अंगीकार करे, उनके चरण चिन्हों का पालन करे और आगे बढ़े भक्ति में, तब जाके जब उनकी कृपा हो जाएगी व्रजवासियों की, तब जाके कृष्ण लीला में प्रवेश किया जा सकता है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक व्रज लीला में प्रवेश नहीं हो सकता, और वो जो व्रजवासी है उनमें ऐश्वर्य ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है, जैसे नंद महाराज कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते, माता यशोदा भी पुत्र मानती है, ईश्वर नहीं मानती, हालांकि विश्वरूप दिखाया था मुख के अंदर, फिर भी नहीं मानती। जो गोपगण है वो भी भगवान कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं लेकिन उन्हें ईश्वर नहीं मानते हैं, ये उनका एक विशेष गुण है। तो इस प्रकार से ऐश्वर्य भाव से हीन होके जब इनके चरण चिन्हों का पालन किया जाता है तब जाके व्रज में या व्रज की लीला में हमें प्रवेश मिल सकता है। महाप्रभु कहते हैं व्रजेंद्र नंदन बलि तारे जाने व्रज जन, ऐश्वर्य ज्ञाने नाही कोन संबंध मानन। ये जो व्रज जन है जो केवल भगवान कृष्ण को नंदनंदन मानते हैं और ऐश्वर्य ज्ञान बिल्कुल नहीं मानते हैं, ऐश्वर्य ज्ञान लव मात्र भी ऐश्वर्य ज्ञान उनके अंदर जो है वो नहीं होता है। इसलिए वो जो श्रुतिगण, मैंने कहा श्रुतिगणों ने रासलीला में प्रवेश किया था क्योंकि जो श्रुतिचारी गोपी आगे जाके बनी, क्योंकि गोपियों की उपासना उन्होंने की थी। लक्ष्मी का प्रॉब्लम क्या हो गया, लक्ष्मी अपना स्वयं का ऐश्वर्य और स्वयं की लक्ष्मी का पोजीशन बना के रखना चाहती थी और गोपियों की कृपा इसलिए नहीं मिली, इसलिए रासलीला में प्रवेश लक्ष्मी को भी वर्जित था, इसलिए नहीं मिला। और जो वेंकट भट्ट थे वो नारायण को ही पूर्ण पुरुषोत्तम मानते थे क्योंकि रामानुज संप्रदाय में वो आते थे, तो इसलिए महाप्रभु परिहास उनके साथ कर रहे थे क्योंकि अभी मित्रता हो गई थी। महाप्रभु बोलते हैं कि देखो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, और ये जो नारायण है वो तो केवल भगवान के एक विलास विग्रह के रूप में प्रदर्शित होते हैं। और देखो हमारे कृष्ण तुम्हारी लक्ष्मी का चित्त आकर्षित करते हैं, लेकिन आपने कभी देखा है कि नारायण गोपियों के चित्त का आकर्षण करते हैं? ऐसा कभी नहीं होता। उसके विपरीत हम लोग तो भागवतम में पढ़ते, महाप्रभु बोलते हैं कि जब कृष्ण रासलीला से आंखों से ओझल हो गए तब नारायण वहां पे प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में। गोपियों ने कहा कि चलो हट जाओ, हमें कृष्ण का रास्ता दिखाओ, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ऐसे पूछ रहे थे। तो नारायण को बिल्कुल नहीं चाहती। तो हमारे कृष्ण लक्ष्मी का चित्त आकर्षित करते हैं और वो रासलीला में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन तुम्हारे नारायण हमारे गोपियों का चित्त आकर्षित नहीं कर सकते। ये देखो कैसा है। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से जो वल्लभ भट्ट थे उनको गर्व हो गया था, जो कि नारायण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो गर्व अभी चूर 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 हो जाता है और उनका चेहरा गिर जाता है। महाप्रभु देखते हैं कि कुछ हो रहा है। महाप्रभु फिर कहते कि अरे मैं तो केवल परिहास कर रहा था वल्लभ भट्ट, तुम इसका बुरा मत मानो, मैं केवल शास्त्र चर्चा कर रहा था, लेकिन देखो मैं ये बता सकता हूँ कि कृष्ण और नारायण तो एक ही है और जो लक्ष्मियां हैं वही गोपियां हैं, तो एक समान ही है। भगवान केवल अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं, तो इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक ईश्वर भक्तेर स्थान अनुरूप एक ही विग्रह करे नानाकार रूप। महाप्रभु बताते हैं कि ईश्वर जो है वो भक्त के ध्यान के अनुरूप अलग अलग रूप प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से वल्लभ भक्त अभी अभी संतुष्ट हो जाते हैं और महाप्रभु के चरणों में पढ़ के और महाप्रभु को जो है वो शरण ग्रहण कर लेते हैं। और फिर वल्लभ भट्ट महाप्रभु से कहते हैं कि आपकी कृपा, मैं लक्ष्मी नारायण की अभी तक सेवा की है और उनकी सेवा के फलस्वरूप मुझे आपका दर्शन हुआ है, आप भी स्वयं भगवान है, मैं आपको शरणागत हो जाता हूँ। तो इस प्रकार से वल्लभ भट्ट चित्र महाप्रभु को शरणागत हो जाते हैं। महाप्रभु आलिंगन करते हैं वल्लभ भट्ट को और उनकी सारी कृपा उनके ऊपर बरसाते हैं। और इस प्रकार से महाप्रभु अभी आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। उसके पश्चात महाप्रभु ऋषभ पर्वत पर जाते हैं और एक्चुअली महाप्रभु इतने स्थानों पर जाते हैं और अलग अलग स्थान, मैं तो केवल नाम बता रहा हूँ, वहां पर जाके महाप्रभु कौन से देवता का दर्शन करते हैं उनका 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 वर्णन किया गया है यहाँ पर इस लीला में। और दक्षिण गमन की लीला ये इतनी विस्तार से है, वैसे देखा जाए तो केवल 21 दिन यदि लॉकडाउन पीरियड है तो उसमें केवल महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा उसकी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, इतनी विस्तार से है। दक्षिण गमन प्रभुर अति विलक्षण सहस्त्र सहस्त्र तीर्थ कैला दर्शन, अति विलक्षण लीला है। सहस्त्र तीर्थों को महाप्रभु ने भेंट दिया है। सेई सब तीर्थ स्पर्शी महातीर्थ कैला सेई छले सेई देशेर लोकनिस्तारिला। इस प्रकार से महाप्रभु जो है वो सारे तीर्थों में तो गए, क्यों गए? क्योंकि सारे तीर्थों को महातीर्थ बनाने के लिए गए, कि ऑलरेडी तीर्थ स्थान थे वो, महाप्रभु ने वहां पर स्पर्श करके उन तीर्थों को और पवित्र किया है, महातीर्थ किया है, बड़ा तीर्थ किया है। और कई छले महाप्रभु ने छल किया है कि मुझे तीर्थ यात्रा जाना है। क्यों महाप्रभु ने छल किया? क्योंकि वहां पर जो अलग अलग लोक थे उनका उद्धार महाप्रभु को करना था, इसलिए महाप्रभु उन अलग अलग स्थानों पर जो है वो गए। कैसे महाप्रभु ऋषभ पर्वत पर जाते हैं, वहां पर उन्हें जो है वो परमानंदपुरी मिलते हैं। तो परमानंदपुरी महाप्रभु से कहते हैं कि मैं अभी कुछ समय पश्चात जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। तो ऐसे महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी से आए हैं, आप जानते हैं, दक्षिण भारत यात्रा के लिए। तो महेंद्र पर्वत पर परमानंदपुरी मिलते हैं। परमानंदपुरी कहते हैं कि मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ और वहां से मैं बंगाल जाऊंगा। तो महाप्रभु कहते हैं उन्हें कि आप ठीक है जगन्नाथपुरी से बंगाल जाइए, लेकिन पुनः जगन्नाथपुरी आ जाइए, क्योंकि मेरा परमानेंट निवास स्थान मैंने अभी नीलाचल किया है, तो आप वहां पर आएंगे तो हम दोनों एक साथ कृष्ण कथा करते हुए वहां पर निवास करेंगे, तो आप वहां पर आ जाना, हम लोग एक साथ रहेंगे। फिर उसके पश्चात महाप्रभु श्रीशैल जाते हैं, कामकुष्टीपुरी जाते हैं और वहां से फिर दक्षिण मथुरा किसे कहते हैं, मदुरई चले जाते हैं। और वहां पर एक ब्राह्मण आता है महाप्रभु को विनती करता है कि महाप्रभु मेरे घर प्रसाद के लिए आइए। महाप्रभु चले जाते हैं। उस विप्र का नाम था रामदास, वो भगवान रामचंद्र जी का बहुत ही अनोखा भक्त था और ये दिव्य रस में उनकी सेवा करता था। तो इस प्रकार से महाप्रभु उस दिन कृतमाला नदी में स्नान करके उसके घर चले जाते हैं। दोपहर का समय हुआ था, महाप्रभु देखते हैं प्रसाद की कुछ तैयारी नहीं हो रही है। महाप्रभु पूछते हैं रामदास को, न तो सुगंध आ रही है, न न चूल्हा जलता हुआ दिखाई दे रहा है, न कुछ हो रहा है। महाप्रभु पूछते प्रसाद कहाँ पर है, तूने मुझे प्रसाद के लिए बुलाया है? वो कहता है हम तो वनवासी है, वन में रहते हैं, लक्ष्मण जी अभी गए हैं सब सब्जी शाक सब्जी लाने के लिए, जब माता सीता खाना पकाएगी राम जी को भोग लगाएगी तब जाके प्रसाद मिलेगा। तो इस प्रकार से वो उस हमेशा रामायण के भाव में निमग्न रहते थे। तो फिर ऐसा चलते चलते करके फिर वो बना देते हैं भोग और लगभग दोपहर के 3 बजे महाप्रभु को प्रसाद मिल जाता है। और महाप्रभु अभी उस विप्र को कहते रामदास तू भी खा ले। रामदास कहता है कि मैं अभी उपवास कर रहा हूँ। महाप्रभु कहते अभी कौन सा उपवास कर रहा है तू? वो कहता है कि महाप्रभु मैं अपना जीवन का त्याग करना चाहता हूँ। आत्महत्या का विचार उसके मन में था। वो कहता है कि मैं अग्नि में प्रवेश करूँ कि नदी में कूद जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या पत्थर के ऊपर अपना माथा फोड़ दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। महाप्रभु कहते क्यों 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 क्या हो गया ऐसा? वो कहते हैं कि देखो ना, रावण इतना असुर बड़ा, वो माता सीता को कैसे हरण करके लेके गया? माता सीता वो जगन माता है, उनको कैसे स्पर्श कर पाया रावण, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। महाप्रभु कहते देखो, जो सीता महारानी है वो दिव्य है, उनका शरीर दिव्य है, हमारे भौतिक इंद्रियों से अगोचर है, कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो रावण ने जो है वो माया सीता का हरण किया था, ऐसा तुम समझ लो। वो जो रामदास था उसे महाप्रभु के शब्द के ऊपर विश्वास तो था, लेकिन नहीं मानते मानते कर चल के उसने महाप्रभु के शब्द को स्वीकार कर लिया और उसने भोजन कर लिया। उसने भोजन कर लिया, महाप्रभु ने उसे अपनी कृपा दी, महाप्रभु आगे 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 चलते गए। फिर इसके पश्चात महाप्रभु दुर्वसन करके एक जगह है वहां पर जाते हैं, फिर महेंद्र शैल, उसके पश्चात सेतुबंध यानी रामेश्वर वहां पर जाते हैं। अभी रामेश्वर में एक अच्छी घटना घटती है। सेतुबंध रामेश्वर में महाप्रभु देखते हैं कुछ ब्राह्मण एकत्रित आके वहां पर रामायण की चर्चा कर रहे थे और कूर्म पुराण से वो कुछ चर्चा चल रही थी उनकी वहां पे। तो कूर्म पुराण से महाप्रभु सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो जब महाप्रभु सुन रहे, वो ब्राह्मण चर्चा कर रहे थे कि जब रावण सीता का हरण करने के लिए आया था तब सीता देवी ने अग्निदेव की शरण ग्रहण करी और फिर अग्निदेव ने सीता को वहां से उठाया और माता पार्वती के संरक्षण में रख दिया और एक मायावी सीता प्रकट कराई जो रावण लेके गया था। और जब प्रभु रामचंद्र जी ने युद्ध में रावण को हराया और उसके पश्चात जब सीता को पुनः प्राप्त किया तो अग्नि परीक्षा की गई, और जब अग्नि परीक्षा की गई तब जो मायावी सीता थी वो अग्नि में प्रवेश हो गई और अग्निदेव ने फिर जो मूल सीता थी वो प्रभु रामचंद्र जी को वापस दी। तो ऐसे कूर्म पुराण से वो लोग चर्चा कर रहे थे और उसके कूर्म पुराण में ये सारे श्लोक आते हैं। ये मध्य लीला में भी इसका वर्णन दिया गया है इस अध्याय में। तब महाप्रभु जैसे ही सुनते हैं महाप्रभु बहुत आनंदित हो जाते हैं। माया सीता रावण नील सुनीला आख्याने सुनी महाप्रभु हैला आनंदित मने। जैसे ये आख्यान सुनते हैं महाप्रभु, इसका रेफरेंस मिल गया ना, प्रमाण मिल गया अभी, तो महाप्रभु बहुत आनंदित हो जाते हैं। और महाप्रभु कहते हैं मुझे इसका कॉपी चाहिए। अभी उस समय तो जेरोक्स मशीन नहीं थे, सब हस्तलिपि लिपि लिपित करके लेना पड़ता था। जिसको किसी को चाहिए वो हाथ से उसकी प्रतिलिपि बनानी पड़ती थी। तो सारे कूर्म पुराण की प्रतिलिपि महाप्रभु बनाते हैं और महाप्रभु को किसकी याद आती है? रामदास की याद आती है। अभी वहीं से आए ना महाप्रभु, मदुरई से, मदुरई से रामेश्वरम आए हुए, अभी रामेश्वरम में है महाप्रभु। तो महाप्रभु को रामदास की याद आती है और कहती है अरे उसके मन में यह संशय था, चलो मैं वापस रामेश्वर जाता हूँ और उसका संशय दूर, वापस मदुरई जाता हूँ और उसका संशय दूर करता हूँ। तो महाप्रभु क्या करते हैं, प्रतिलिपि बना लेते हैं हाथ से लिख के और उन ब्राह्मणों को कहते हैं कि ये प्रतिलिपि आपके पास रखिए, आपकी मूल प्रत मुझे दीजिए, मैं उसको मूल प्रत दिखाऊंगा, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ दिखाएगा तो वो इतना विश्वास नहीं करेगा। तो कूर्म पुराण बहुत पुरानी प्रत उन लोगों के पास, ब्राह्मणों के पास थी, वो ओरिजिनल वो मूल प्रत लेके महाप्रभु पुनः जाते हैं मदुरई में, दक्षिण मथुरा जहाँ पे वो रामदास था, रामदास को मिलते हैं। रामदास को वो प्रूफ बताते हैं कि देख ये कूर्म पुराण में लिखा हुआ है। वो उसको इतना विश्वास हो जाता है अभी, क्योंकि अभी शास्त्रों से प्रमाण मिल गया, तो वो अभी बहुत आनंदित हो जाता है। महाप्रभु कहते महाप्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा मन का संशय बहुत बड़ा भार हल्का हो गया है। उस समय आपको मैंने भोजन खिलाया था लेकिन पूरे मन के साथ कुकिंग नहीं किया था, अभी आप कृपया यहाँ पर रुक जाइए, मैं अच्छे से आपके लिए भोजन बनाऊंगा, आप उसको ग्रहण कीजिए। फिर महाप्रभु उसके पास रुकते हैं और अच्छे से भोजन का आस्वादन लेते हैं, दोनों एक साथ कृष्ण कथा करते हैं, रात्रि वहीं पर बिताते हैं और दूसरे दिन महाप्रभु वहां से प्रस्थान करना प्रारंभ कर देते हैं। तो एक बार मैं राधा गोपीनाथ प्रभु इनके मुख से सुन रहा था कि किस प्रकार से भक्तों की केयर करनी चाहिए, तो महाप्रभु यहाँ पर उस रामदास की इमोशनल नीड को फुलफिल कर रहे थे। जो हमारी अलग अलग आवश्यकताएं होती है, शारीरिक आवश्यकता, मानसिक आवश्यकता और भावनाओं की आवश्यकता, बौद्धिक आवश्यकता, आत्मिक आवश्यकता, तो इस प्रकार से अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए भक्तों की। इस प्रकार से महाप्रभु ने उस रामदास की जो है वो जो भावनिक आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की और उसका दुख जो है वो दूर किया और महाप्रभु आगे चले गए। आगे जाते महाप्रभु पांड्य देश ताम्रपर्णी नदी में, वहां पर वो स्नान करते हैं, फिर चीड़तला जाते हैं, तिलकांची गजेंद्र मोक्षण स्थान जहाँ पे गजेंद्र मोक्ष किया था भगवान ने, पानागढ़ी, चमतापुर, मलय पर्वत, कन्याकुमारी चले जाते महाप्रभु, अम्बली तल, मल्लार देश जहाँ पे भट्ट थरी करके कुछ लोगों की जमात रहती है वहां पर जाते हैं, उसके पश्चात तमाल कार्तिक क्षेत्र जाते हैं और वेतापनी महाप्रभु चले गए हैं। जब वेतापनी में महाप्रभु थे, महाप्रभु देखते हैं उनके साथ कौन है सेवक, महाप्रभु के साथ आपको याद है क्या नाम है उसका, कृष्णदास, महाप्रभु का सेवक वो साथ में है। नित्यानंद प्रभु ने विनती की थी आप उसे लेके जाइए कमंडलू कपड़े वो सब सेवा करने के लिए, कृष्णदास महाप्रभु के साथ में। महाप्रभु देखते हैं कृष्णदास ये भट्टथरी जो लोग है उनके साथ में मिक्स हो रहा है। एक्चुअली क्या हो गया था, भट्टथरी लोगों ने उन्हें कुछ स्त्रियों और धन इनसे जो है वो आकर्षित कर लिया था। स्त्री धन देखा तार लोभा जन मैला, आर्य सरल विप्रेर बुद्धिनाश कैला। ये सरल विप्र था लेकिन उसे जो है वो स्त्रियों का धन का लालच देके इन भट्टथरी कम्युनिटी के लोगों ने जो है वो उसका मन हरित कर लिया था, उसका हरण कर लिया था और उसकी बुद्धि का जो है वो नाश हो गया था। देखिए महाप्रभु के संग में रहते भी माया का प्रभाव हो सकता है, इससे हमें हमेशा सतर्क अटेंटिव जो है वो होना चाहिए। तो महाप्रभु देखते हैं ये जा रहा है, महाप्रभु उस दिन उसके पीछे 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 जाते हैं, जहाँ कहाँ रहा है, तो भट्टथरी के पास वो गया था और वो सब तांत्रिक लोग थे, सन्यासी टाइप वेश परिधान किए हुए थे। महाप्रभु वहां पर चले जाते हैं और महाप्रभु उनसे वार्तालाप करना चाहते हैं, आपने क्या किया है, आप भी सन्यासी है, मैं भी सन्यासी हूँ, ये मेरा सेवक है, आप इसके साथ ऐसा छल नहीं कर सकते। तो वो लोग सुनने की मनस्थिति में नहीं होते हैं, तो वो लोग तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र निकालते हैं, महाप्रभु के ऊपर जोर से हल्ला बोल देते हैं। अभी महाप्रभु अकेले और ये बहुत सारा जमात थी, लेकिन जो इतने सारे अस्त्र देख के महाप्रभु कुछ नहीं करते हैं, महाप्रभु केवल अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वो सारे अस्त्र शस्त्र उन लोगों के ऊपर ही अटैक करना प्रारंभ कर देते हैं। अब उनके ऊपर वो अस्त्र चले जाते हैं, तो सारे शस्त्र जब उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, कुछ लोग वहां पर धारा मर जाते हैं, कुछ लोग वहां से भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से चीख चिल्लाहट जोर से चल रही थी, महाप्रभु ने धीरे से कृष्णदास को पकड़ लिया और अपने साथ लेके आ गए। तो इस प्रकार से कृष्णदास को जो है वो महाप्रभु उन भट्टथरी जमाती के लोगों से रक्षा कर देते हैं और फिर महाप्रभु वहां से आगे निकलते हैं। महाप्रभु पयस्विनी नदी में जाते हैं, वहां पर स्नान करते हैं, उसके पश्चात आदि केशव मंदिर में दर्शन करने के लिए महाप्रभु जाते हैं। आदि केशव मंदिर दक्षिण भारत का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और वहां पर महाप्रभु को ब्रह्म संहिता नामक ग्रंथ मिलता है। तो जैसे ही महाप्रभु देखते कुछ ब्राह्मण उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म संहिता सुन लेने के पश्चात महाप्रभु समझ लेते कि ये ऐसा ग्रंथ है, ये सारे वैष्णवों का सिद्धांतों का सार प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। सिद्धांत शास्त्र नाही ब्रह्म संहिता रसम, गोविंद महिमा ज्ञानेर परम कारण। सिद्धांत शास्त्र में यदि कोई ग्रंथ है तो ब्रह्म संहिता से बड़ा सिद्धांत वाला कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि गोविंद की पूरी महिमाओं का वर्णन उसमें है और सारे तत्वों से पूर्ण है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि ब्रह्म संहिता के ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन्होंने भी अपनी टीका लिखी है। तो ऐसा ग्रंथ है ब्रह्म संहिता, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है और हम लोग भी देखते हैं इस्कॉन में कई बार इसका जो है वो पठन होता है। हमारे मंदिर में भी हम लोग हर रविवार को सुबह ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं। तो ब्रह्म संहिता के समान कोई और महाप्रभु कहते हैं ग्रंथ नहीं है सिद्धांत के तौर पे यदि देखा जाए तो ये ब्रह्म संहिता महाप्रभु ने वहां से लिया और आज हमारे पास उसका केवल जो 5वां अध्याय है वही शेष है, बाकी अभी तक उसका पता नहीं है वो कहाँ पर है पूरा ग्रंथ। तो तो केवल एक पांचवा अध्याय हमारे पास जो है वो शेष है। तो महाप्रभु ने उसकी भी प्रतिलिपि अपने साथ बना ली और साथ में चलते महाप्रभु अभी आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं महाप्रभु, अनंत पद्मनाभ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, फिर जनार्दन मंदिर, पयस्विनी नदी और उसके पश्चात महाप्रभु श्रृंगेरी मठ चले जाते हैं। शंकराचार्य जी का जो आदि मठ है वहां पर जाते हैं, वहां पर जाके आते हैं। उसके बाद मत्स्य तीर्थ चले जाते हैं, तुंगभद्रा नदी वहां पर स्नान करते हैं और उसके पश्चात महाप्रभु उडुपी आते हैं। उडुपी में जो मध्वाचार्य स्थापित नर्तक गोपाल ये विग्रह है उनको देख के और उनकी सेवा को देख के महाप्रभु बहुत आनंदित हो जाते हैं और आनंद के कारण महाप्रभु वहां पर जो है वो कीर्तना नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। तो वहां पर कीर्तना नृत्य प्रारंभ जैसे ही कर देते महाप्रभु, वहां पर जो मध्वाचार्य के शिष्यों के कोई शिष्य जो थे वो तात्विक लोग, वो लोग वहां पर अभी नर्तक गोपाल की उपासना संभाल रहे थे। तो वो लोग जब देखते हैं कि ये कोई सन्यासी आया हुआ है और नर्तन कर रहा है, नृत्य कर रहा है, तो उन्हें लगता है कि शायद कोई ये मायावादी सन्यासी है, इसलिए वो उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देखते और उनके साथ बात भी नहीं करते। फिर महाप्रभु कीर्तन करते हुए भावावेश हो जाते हैं और वहीं पर मूर्छित होकर गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं। तब वो सब तत्ववादी जब ये देखते हैं महाप्रभु के दिव्य लक्षण, तब उन्हें लगता है कि हाँ ये वैष्णव सन्यासी है। तब जाके वो उनसे बात करते हैं, कहाँ से आए, कौन है, इस प्रकार से जो है वो वार्तालाप होता है उनका। फिर वो जो लोग थे उनके अंदर वैष्णव होने का थोड़ा गर्व था कि हम सबसे बड़े वैष्णव है, तो इस गर्व का हरण करने के लिए महाप्रभु उनसे वार्तालाप और शास्त्रार्थ भी प्रारंभ कर देते हैं। और महाप्रभु उन सबके जो प्रमुख गुरु थे उनको ये प्रश्न पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय क्या है। ये दो प्रश्न पूछते हैं आपको भी कि किसी व्यक्ति को अध्यात्म में वो कहां पर है, व्हाट इज द लोकस स्टैंडिंग ऑफ दैट फेलो इन स्पिरिचुअलिटी। यदि आपको जानना है तो आप केवल ऐसे व्यक्तियों को दो प्रश्न पूछने का है। महाप्रभु हमें सिखाते हैं आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के प्राप्ति का उपाय क्या है आपका। वैसे देखा जाए तो रामानंद राय के साथ भी महाप्रभु ने यही चर्चा की थी, साध्य कहा था पहले, मतलब वो जीवन का लक्ष्य हो गया, और साधन का अर्थ है लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय। तो वही दो प्रश्न महाप्रभु इनको भी पूछते हैं। ये दो प्रश्न बहुत आवश्यक है, किसी को भी आप ये प्रश्न पूछिए और समझ में आ जाएगा वो व्यक्ति कहाँ तक पहुंचा हुआ है अध्यात्म में, जीवन का लक्ष्य और उसके प्राप्ति का उपाय। तो जो गुरु थे उन सारे लोगों के वो कहते हैं कि देखो व्यक्ति ने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए और वर्णाश्रम धर्म का पालन करते करते अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करते रहेंगे तो धीरे धीरे आगे जाके हमें मुक्ति पास, हम लोग मुक्ति पा सकते हैं और उसके पश्चात आगे जाके वैकुंठ धाम में जा सकते हैं। तो ऐसा वो उन्हें बताते हैं। तो मतलब सर्वोच्च ध्येय बता दिया मुक्ति और उसके लिए कारण बता दिया वर्णाश्रम धर्म का पालन। महाप्रभु कहते हैं ये सब कुछ जो है वो कुछ काम का नहीं है और अलग 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 शास्त्रों से महाप्रभु प्रमाण देते हैं। अंत में आके बताते हैं कि श्रवण कीर्तन जो है वो सर्वश्रेष्ठ साधन है और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना यह सबसे बड़ा लक्ष्य है। श्रवण कीर्तन होते कृष्ण हो प्रेमा से ही पंचम पुरुषार्थ पुरुषार्थेर सीमा। सारे पुरुषार्थों की सीमा है, क्या है, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, और वो कैसे प्राप्त हो सकता है, श्रवण कीर्तन हैते कृष्ण होयो प्रेमा, भगवान कृष्ण में प्रेम उत्पन्न हो सकता है जब कोई व्यक्ति श्रवण और कीर्तन इस विधि का स्वीकार करता है। और इस प्रकार से महाप्रभु ने सारे सकाम कर्म, सारी मुक्ति, इन सबका जो है वो त्याग करने के लिए बताया उन्हें। पंचविध मुक्ति त्याग करे भक्तगण फल्गु करी मुक्ति देखे नर के रसम। महाप्रभु बता रहे हैं उनको कि पंचविध मुक्ति त्याग करे भक्तगण, भक्तगणों को ये पांचों मुक्तियां जो है वो इसका वो त्याग कर देते हैं। और किस प्रकार से त्याग कर देते हैं, फल्गु करी मुक्ति देखे, ये फल्गु मतलब इतना तुच्छ करके देखते हैं और देखे नर के रसम, ये नरक में रहने के समान है, ऐसा मुक्ति को लोग देखते हैं। कैवल्यम नरकायते सालोक्य सारिप्य सारूपैकत्वमप्यत्व, दियमानम न गृहणन्ति विना मत सेवनम जना। कपिल मुनि माता देवहूति को बताते हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कि देने के बाद भी नहीं लेते मेरे भक्त ये पांच प्रकार की मुक्तियां, इनके नाम भी इस श्लोक में वर्णन आता है। तो महाप्रभु ये सब रेफरेंसेस बता के उन्हें समझा देते हैं कि महाप्रभु कहते हैं कि देखो आपने बताया सर्वश्रेष्ठ साध्य बताया मुक्ति, और उसे प्राप्त करने का साधन बताया आपने सकाम कर्म, तो आप सन्यासी होकर के सन्यास वेश परिधान करके आप लोगों के साथ छल कर रहे, कपट कर रहे, कृपया इसका त्याग कर दीजिए, भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण कर लीजिए। फिर वो सारे लोग महाप्रभु को शरण जाते हैं, उनके तत्वों को स्वीकार करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम लोगों ने हमारे संप्रदाय से यही सीखा है महाप्रभु, क्या करें। तो महाप्रभु बताते हैं कि देखो तुम्हारा जो संप्रदाय है उसमें दो दोष है। क्या दोष है? एक तो ज्ञान मिश्र और कर्म मिश्र है, तो हमें शुद्ध भक्ति चाहिए, ये दोनों मिक्सचर जो है वो निकालना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे संप्रदाय का एक बहुत अच्छा गुण है, महाप्रभु कहते हैं क्या है सबसे अच्छा गुण, आप लोग अर्च विग्रहों को असली मानते हैं और उनकी सेवा दृढ़ता से करते हैं, यह सबसे अच्छा गुण है आप लोगों का। तो हम लोग आज भी देखते हैं उड़पी में बहुत अच्छे से सेवा चलती है, तो ये अच्छा गुण जो है वो महाप्रभु कहते हैं। और इस प्रकार से फिर उनको एप्रिसिएशन करके, उनको भक्ति प्रदान करके महाप्रभु अपनी अगला प्रवास प्रारंभ करते हैं। करते करते महाप्रभु फल्गु तीर्थ चले जाते हैं, त्रितकूप गोकर्ण द्वैपायनी सुरपारक तीर्थ कोल्हापुर, और फिर बाद में महाप्रभु पहुंच जाते हैं पंढरपुर। पंढरपुर में एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण महाप्रभु को आमंत्रित करता है, आइए हमारे घर प्रसाद के लिए। महाप्रभु उनका आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं, प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं। प्रसाद पाने के पश्चात महाप्रभु को समझता है कि माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य श्रीरंगपुरी वो भी उनके घर में रुके हुए हैं। महाप्रभु तुरंत जाते हैं श्रीरंगपुरी को मिलने के लिए, उनको प्रणाम करते हैं, श्रीरंगपुरी उनका आलिंगन करते हैं, और उनकी जो है वो बहुत सुंदर कृष्ण कथा जो है वो चलती रहती है भावावेश में। और महाप्रभु के भाव को देख के श्रीरंगपुरी समझ जाते हैं कि तुम्हारा माधवेंद्रपुरी के साथ जरूर कोई ना कोई रिश्ता होगा, क्योंकि वो श्रीरंगपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। और माधवेंद्रपुरी हमने देखा था, आपको याद होगा आदिलीला अध्याय 9 भक्ति कल्प वृक्ष का वर्णन, उसमें माधवेंद्रपुरी को क्या बताया है आपको याद होगा, आपकी पढ़ाई चल रही होगी तो अच्छे से। माधवेंद्रपुरी को जो है वो भक्ति का वृक्ष का पहला बीज, पहला अंकुर बीज के रूप में माना गया है, पहले बीज के रूप में भक्ति लता का बीज है वो, और उसमें फिर महाप्रभु ने सिंचन किया हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपको हिंट दे रहा हूँ मैं एग्जाम के लिए कि भक्ति कल्प वृक्ष का सारा बीज क्या है, शाखाएं क्या है, तना क्या है, उसके मूल कौन से है, उस मूलों में प्रधान मूल कौन है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो श्रीरंगपुरी कहते हैं कि आपका जरूर माधवेंद्रपुरी के साथ कुछ संबंध होना चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हाँ मैं ईश्वरपुरी का शिष्य हूँ, और ईश्वरपुरी किसके शिष्य थे, ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य थे। तो इस प्रकार से हमें समझ में आ जाता है कि इन दोनों का संबंध कितना गाढ़ा था। तो बोलते 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 श्रीरंगपुरी पूछ लेते आपका जन्मस्थान कौन सा है, जैसे हम लोग भी भक्तगण पूछते हैं ना कि आप कहाँ से, तो महाप्रभु पूछेगा आप कहाँ से, महाप्रभु कहे कि मैं नवद्वीप से हूँ। तो श्रीरंगपुरी को उनकी अपनी पुरानी याद आ जाती है, अच्छा नवद्वीप से है आप, मैं मेरे गुरु माधवेंद्रपुरी इनके साथ कुछ समय पूर्व नवद्वीप गया था, वहां पे मैं एक ब्राह्मण के घर गया था प्रसाद के लिए, उनका नाम था जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी शची देवी, वाह क्या पतिव्रता स्त्री, क्या भोजन बनाया था उन्होंने, वाह 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 अभी तक याद है मुझे। और उनके घर में दो छोटे लड़के थे, और उसका बड़ा लड़का जिसको हम लोग लेके आए थे, और उसको बड़े लड़के को यही पे पंढरपुर में जो है वो सिद्धि प्राप्त हुई थी, उसका नाम हुआ था शंकरारण्य। अभी महाप्रभु को मिस्ट्री खुल के सामने आ जाती है, महाप्रभु कहते अरे प्रभु कहे पूर्वाश्रमे तेह मोर भ्राता जगन्नाथ मिश्र पूर्वाश्रमे मोर पिता, आप उनके घर में गए थे जगन्नाथ मिश्र वो तो मेरे पिताजी है, और वो जो शंकरारण्य आप कह रहे हैं बता रहे हैं वो तो मेरा भाई है पूर्वाश्रमी का, मतलब पूर्वाश्रम में, मतलब जब गृहस्थ आश्रम में मैं था। देखिए अभी महाप्रभु अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, वो तो मेरा भाई था, वो मेरे पूर्वाश्रम का भाई था, और वो मेरे पूर्वाश्रम के पिताजी थे, क्योंकि अभी इस आश्रम में क्या है कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, क्योंकि अभी उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था, तो सब कुछ कृष्ण है अभी। तो इस प्रकार से जो है वो उनका वार्तालाप होता है। कुछ समय के पश्चात श्रीरंगपुरी वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान कर लेते हैं, और वहां से अभी महाप्रभु और 3-4 दिन पंढरपुर में निवास करते हैं। पंढरपुर में अच्छे से महाप्रभु चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं, उसके पश्चात आगे चल के विठ्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और वहां पे बहुत सुंदर नगर कीर्तन महाप्रभु ने जो है वो पंढरपुर में किया। उसके पश्चात महाप्रभु जो है वो कृष्णवेना नदी यहाँ पर चले जाते हैं, आजकल का जो सातारा ये कहा जाता है, और वहां पर कुछ ब्राह्मण वहां पर चर्चा कर रहे थे कृष्ण कर्णामृत, जो कवि कर्णपुर इन्होंने जो जो बिल्वमंगल ठाकुर इनके द्वारा रचित कृष्ण कर्णामृत इस ग्रंथ को चर्चा कर रहे थे। महाप्रभु जैसे उसको सुन लेते हैं, महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है, और उसकी भी प्रतिलिपि महाप्रभु बना के अपने साथ में ले लेते हैं। तो ऐसे दक्षिण भारत में महाप्रभु ने 2 ग्रंथ अर्जित किए। सबसे पहला लिया ब्रह्म संहिता और दूसरा लिया कृष्ण कर्णामृत, और ये वास्तव में पूंजी महाप्रभु अपने साथ दक्षिण भारत से लेके आए। ब्रह्म संहिता कर्णामृत दुई पुथी पा महारत्न प्राय पाई आईला संगे ला, कि ये ब्रह्म संहिता और कर्णामृत ये दुई पुथी दो पोथियां दो ग्रंथ महाप्रभु ने अपने साथ लाए, और जिस प्रकार से एक कोई महारत्न प्राप्त होता है उस प्रकार से रत्नों की भांति इन दो पोथियों को महाप्रभु जो है वो अपने साथ लेके आए। उसके पश्चात महाप्रभु चलते 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 आगे जाते हैं, तापी नदी में जाते हैं, वहां पर स्नान करते हैं, माहिष्मतीपुर वहां पर जाते हैं, नर्मदा नदी में स्नान करते हैं, धनुष तीर्थ जाते हैं, और निर्विंध्या नदी में वहां पर स्नान करके आगे चल के ऋष्यमुख पर्वत, और वहां से आगे फिर दंडकारण्य वहां पर चले जाते हैं। उसके बाद महाप्रभु सप्तताल चले जाते हैं। सप्तताल वहां पर 7 ताल के बहुत बड़े 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 वृक्ष वहां पर थे। सप्तताल देखी प्रभु आलिंगन कैल सशरीर सप्तताल वैकुंठे चलिल, वाह क्या महिमा वहां पर वर्णित की गई है। 7 ताल वृक्षों को महाप्रभु ने वहां पर आलिंगन दिया, और वो ताल के वृक्ष जो है वो सशरीर वैकुंठ चलीला, उस शरीर में ही वैकुंठ की तरह दिशा में जा रहे। कल्पना कीजिए, किसी ने आलिंगन दिया और वो सशरीर जा रहे वैकुंठ, वो वृक्ष सारे लोग देख के वहां पर आचंबित हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते, और कहते कि ये जरूर प्रभु रामचंद्र होंगे जिन्होंने इन ताल वृक्षों को आलिंगन दिया है। क्योंकि देखिए, इसका वर्णन तो चैतन्य चरितामृत में नहीं है, लेकिन वैष्णव आचार्य बताते हैं कि जब प्रभु रामचंद्र जी सप्तताल में गए थे और सुग्रीव उन्हें कहा था कि आपकी शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, उस समय महाप्रभु ने इन ताल वृक्षों का उपयोग किया था। तो अपना उन्होंने तीर निकाला था और इन ताल वृक्षों को भेदन करके वो पूरे पृथ्वी का भ्रमण करके अपने तर्कश में वापस आ गया था। तो आचार्य बताते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी उन वृक्षों को याद रखे हैं कि उन्होंने मेरी सेवा की थी, मेरी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वो चैतन्य महाप्रभु ने स्मरण में रखा और उनको आलिंगन देके अभी उनको भगवान के धाम में भेजा। तो जो हम लोग गीता का श्लोक पढ़ते हैं 2 अध्याय का 40वां, नेहा भीक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि छोटी सी भी सेवा यदि भगवान को अर्पण कर देता है तो भगवान उसे भूलते नहीं है। तो इन ताल वृक्षों की रामचंद्र के अवतार में की गई सेवा चैतन्य महाप्रभु ने अभी याद रखी। सप्तताल देखी प्रभु आलिंगन कैलास शरीर सप्तताल वैकुंठे च लीला, वैकुंठ जा रहे सप्तताल, लोग देख के आचंबित हो रहे, उनको प्रभु राम समझ रहे हैं और उनको शरणागत हो जाते हैं। महाप्रभु उन लोगों पर भी वहां पर कृपा करते हैं। महाप्रभु उसके पश्चात पंपा सरोवर जाते हैं, और उसके पश्चात महाप्रभु जाते हैं बहुत ही विशेष स्थान जिसका नाम है पंचवटी। महाप्रभु पंचवटी में पहुंचते हैं, कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं, और नासिक वाले भक्तों के लिए बहुत सुंदर सूचना, अध्याय क्रमांक 9 श्लोक संख्या 317, यहां पर प्रूफ है कि महाप्रभु नासिक आए थे। नासिक के त्रंबक देखी गेला ब्रह्मगिरी कुशावर्ते आईला यहां जन्मिला गोदावरी, कि नासी के त्रंबक देखी गेला ब्रह्मगिरी, नासिक में आए महाप्रभु कालाराम, उनका दर्शन किया, पंचवटी में कुछ समय के लिए विश्राम किया, फिर त्रंबक चले गए महाप्रभु, ब्रह्मगिरी पर्वत देखा, कुशावर्त पर आए जहां पर गोदावरी का उगम होता है, कुशावर्त आईला यहां जन्मिला गोदावरी। और इस प्रकार से महाप्रभु भी इस भूमि में आए हैं, प्रभु रामचंद्र जी के द्वारा पावन की हुई ये भूमि है नासिक, महाप्रभु आए थे। और श्रील प्रभुपाद जी भी 1971-72 उसके दौरान नासिक में आए थे, वहां पर भी उन्होंने कीर्तन किया हुआ था। तो भक्ति का संचारण, भक्ति का बीजारोपण जो है वो तब से यहाँ पर हुआ है। उसके पश्चात महाप्रभु चलते हैं आगे आगे जाते हैं और दक्षिण की दिशा में जाके सप्त गोदावरी तीर्थ स्थान जाते हैं और वहां से महाप्रभु पुनः अपना रिटर्न जर्नी, प्रति का प्रवास जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। और वापस आते 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 महाप्रभु पुनः विद्यानगर आते हैं। विद्यानगर में किसे मिले थे महाप्रभु? आठवें अध्याय में रामानंद राय। तो रामानंद राय को पुनः महाप्रभु मिलते हैं और जो दो बुक्स महाप्रभु लाए थे दक्षिण भारत से पूरी यात्रा से, कौन से दो बुक? ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत। ये दोनों रामानंद राय के साथ चर्चा करते हैं, देखो मैं कितना सुंदर धन लेके आया हूँ। क्या था धन? दो ग्रंथ। और वो रामानंद राय के साथ चर्चा करते हैं, आलिंगन देते हैं रामानंद राय को, दोनों प्रेमावेश में उन दो पुस्तकों के ऊपर उनकी चर्चा चलती है। रामानंद राय उनकी प्रतिलिपि पुनः बना लेते, अपने पास रख लेते हैं और महाप्रभु को उनकी जो प्रत थी वो पुनः दे देते हैं। और आपको याद होगा आठवें अध्याय के अंत में हमने चर्चा किया था, महाप्रभु ने आज्ञा दी थी रामानंद राय को कि आप इस्तीफा दे दीजिए आपके कार्य से और जगन्नाथपुरी आ जाइए। तो अभी महाप्रभु मिल रहे वापस रामानंद राय से, अभी आपको थोड़ा सा कनेक्शन लग जाएगा कि फिर अभी रामानंद राय महाप्रभु से बोलते हैं कि मैंने राजा को निवेदन तो दे दिया है और पत्र लिख दिया है और मैं भी, मेरा सैंक्शन लगभग हो गया है, 90% लीव सैंक्शन हो गई है, थोड़ा सा बाकी है, मैं भी कुछ समय पश्चात जगन्नाथपुरी चलूंगा। महाप्रभु कहते कुछ समय पश्चात अभी चलो मेरे साथ, मैं आपको लेके जाता हूँ, इसी कारण के लिए तो मैं आपके यहाँ पे मिलने के लिए आया हूँ, चलो साथ में चलते हैं। रामानंद राय कहते कि नहीं, देखिए महाप्रभु मैं जब आऊंगा ना तो मेरे साथ थोड़े हाथी घोड़े पालकी सब कुछ होगा, क्योंकि वो बड़े बड़े मंत्री थे राजा के, तो ये सब होगा, इससे कोलाहल होगा और आपके भक्ति में जो है वो कीर्तन में विघ्न हो जाएगा, इसलिए आप आगे चलिए, 10 दिन के पश्चात मैं वापस नीलाचल आ जाऊंगा और आपको जरूर मिलूंगा, प्रॉमिस। तो महाप्रभु कहते हैं कि ठीक है। महाप्रभु उसी रास्ते से, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आते आते जिन लोगों को उन्होंने पहले भक्ति प्रदान की थी उन सबको मिलते 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 आके वापस, और वो जो कूर्म ब्राह्मण, आपको याद होगा सातवें अध्याय में जिसे कृपा दी थी महाप्रभु ने, उसे कहा था कि मैं वापस तुम्हें मिलूंगा, तुम्हें मेरे साथ आने की आवश्यकता नहीं है, उसे मिले, उसके यहाँ पे रुके, पुनः प्रसाद ग्रहण किया, सारे परिवार वालों को कृपा दी और कृपा करते 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 महाप्रभु पुनः आ जाते हैं अलालनाथ। आपको याद होगा अलालनाथ सातवें अध्याय में हमने चर्चा किया था, सब भक्त महाप्रभु को छोड़ने के लिए अलालनाथ तक आए थे नित्यानंद प्रभु सब लोग, और उसके पश्चात महाप्रभु आगे निकल गए थे और अलालनाथ से सारे भक्त नीलाचलपुरी के लिए चले गए थे। तो अभी महाप्रभु घूमते 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 पूरा दक्षिण भ्रमण करके अलालनाथ पहुंच गए और अलालनाथ में महाप्रभु जो उनके साथ सेवक है अभी उसको बचा के लाया है कृष्णदास, उसको कहते कि जाओ जाके सबको बुला के लाओ मैं आया हूं करके। फिर सारे भक्त अभी जैसे न्यूज सुनते हैं कि महाप्रभु आ गए, तो शायद से लगभग डेढ़ दो साल तक महाप्रभु ये दक्षिण भ्रमण की यात्रा के लिए गए थे। तो ये जो है सारे भक्त अभी इतना समय हो गया विरह महसूस कर रहे होंगे महाप्रभु से, अभी महाप्रभु की आने की खबर मिलती है सारे भक्त नाचने लगते हैं। जगदानंद दामोदर पंडित मुकुंद नाचिया चलीला देहे नाकर नाध नाधरे आनंद, आनंद को पकड़ नहीं पा रहे, उनका देह को संभाल नहीं पा रहे और देह अपने आप न्यूज मिलते ही नाचने लगा, अपने देह को रोक नहीं पा रहे, इतना आनंदित हो जाते और नाचते 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 महाप्रभु को मिलने के लिए जाते। गोपीनाथ आचार्य, जगदानंद, मुकुंद, दामोदर, सर्व भट्टाचार्य सारे अभी महाप्रभु को मिलते हैं और सर्व भट्टाचार्य के साथ महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए अभी वहां पर जाते हैं। जगन्नाथ जी के जैसे दर्शन कर देते वहां पर पुजारी महाप्रभु को कुछ प्रसाद और माला वहां पर अर्पण कर देते हैं, महाप्रभु उसको लेके वापस पुनः सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ पर आ जाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ पे दोपहर का प्रसाद पा लेते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को विनती करते कि महाप्रभु कृपया आज के दिन आप यहीं पे रहिए, और महाप्रभु उस रात सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर ही रुकते हैं और दक्षिण भारत का जो सारा उनका वृत्तांत है वो सुनाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कोई भक्त यदि यात्रा जाते हैं तो यात्रा से जो कुछ चीज लाया है वो उन्हें देते हैं और यात्रा का सारा वृत्तांत बताते हैं, हम लोग यहाँ गए, ये देखा, वो देखा। उस प्रकार से सारी रात भर बिना सोए महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ चर्चा कर रहे हैं, सारा दक्षिण भारत का वृत्तांत देते हैं और जो दो पुस्तकों की प्रतिलिपियां लाई थी उसके ऊपर भी जो है वो उनकी चर्चा जो है वो चलती रहती है। और फिर महाप्रभु कहते हैं कि सारी दक्षिण भारत यात्रा में करके आया लेकिन आपके जैसा भक्त मुझे नहीं मिला। और महाप्रभु कहते हैं कि मुझे एक भक्त वहां पर मिला, बहुत अच्छा था, जिनका नाम था रामानंद राय। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि इसलिए तो मैंने आपको कहा था कि आप जाके रामानंद राय को विद्यानगर में मिलना। महाप्रभु कहे कि अच्छा हुआ आपने बताया मुझे मिलने के लिए, मैं मिला, बहुत अच्छे भक्त हैं और मैंने उनको यहाँ पर बुलाया भी है, कुछ समय पश्चात वो यहाँ पर आने भी वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है वो पूरा दक्षिण भारत का भ्रमण हमने महाप्रभु का सुन लिया है। प्रभुर तीर्थ यात्रा कथा सुने ये जन, चैतन्य चरणे पाए गाढ़ प्रेम धन। जो भी व्यक्ति इस महाप्रभु की दक्षिण तीर्थ यात्रा को ध्यान पूर्वक सुन लेता है, चैतन्य चरणे पाए गाढ़ प्रेम धन, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गाढ़ प्रीति जो है वो उस व्यक्ति की हो जाती है। तो इस प्रकार से ये दक्षिण भारत का गमन हमारा पूर्ण हो जाता है। और हम लोग आते हैं हमारे नवे अध्याय का अभी पहला श्लोक, जो संपूर्ण अध्याय का सार बताता है, जो कविराज गोस्वामी पहले बताते हैं हम लोग उसे अंत में लेते हैं पूरी लीला सुनने के पश्चात, ताकि हम लोग रिलेट कर पाएंगे कि वो क्या था पहला श्लोक, पूरी लीला हमें समझ में आ गई है। तो पहले श्लोक में कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, नाना मत ग्राह ग्रस्तान दाक्षिणात्य जन द्वीपान कृपारीणा विमुच्चैतान गौरश्चक्रे स वैष्णवान। महाप्रभु क्या बताते हैं कि नाना मत ग्राह ग्रस्तान दक्षिणात्य जनद्वीपान, जिस प्रकार से हाथी को मगरमच्छ पकड़ लेती है उस प्रकार से ये जो दक्षिणात्य लोक थे, पंडित लोक थे, उनको नाना मत ग्राह अलग अलग मतों ने ग्रहण कर लिया था, जैसे बौद्ध हो गया, मायावाद हो गया, इस प्रकार से अलग 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 मतों ने इनको ग्रहण लगा दिया था, ग्राह लिया था। इसलिए महाप्रभु वहां पर गए और कृपा ऋणा महाप्रभु ने चक्र से उस मगरमच्छ को मार दिया और इनका उद्धार किया। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं गजेंद्र मोक्ष में स्वयं विष्णु वहां पर प्रकट होते हैं और उस मगरमच्छ को चक्र से ध्वंस कर देते हैं और गजेंद्र का मोक्ष कर देते हैं, इस प्रकार से अभी महाप्रभु यहाँ पर गए और अलग अलग मतों रूपी मगरों को उन्होंने अपने चक्र से मारा। और कौन सा चक्र था उनके पास? कृपा अरीणा, कृपा का चक्र था। कृपा के चक्र से महाप्रभु ने उन सारे दाक्षिणात्य लोगों को बचाया और गौरस चक्रे स वैष्णवान, और महाप्रभु ने सबको जो है वो श्रेष्ठ वैष्णव बना दिया। तो इस प्रकार से हमारा दक्षिण भारत महाप्रभु का प्रयास पूर्ण हो, महाप्रभु का जो भ्रमण था नवाध्याय दक्षिण भ्रमण वो पूर्ण हो गया है। और अभी महाप्रभु अभी पुरी में आ गए है, तो अभी महाप्रभु इतने सालों पश्चात अभी पुरी में आ गए है, तो भक्त कई सारे महाप्रभु को मिलने के लिए उत्सुक है। तो कौन कौन से वो भक्त है जो महाप्रभु को आके मिलेंगे उत्सुकता से, वो चर्चा हम लोग करेंगे कल 10वां अध्याय, जिसका शीर्षक रहेगा भक्त पुनः मिलन, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभु पाद की जय। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो चैतन्य चरितामृत कंटेस्ट है उसमें बहुत ही उत्स्फूर्त प्रतिसाद हमें भक्तों को मिल रहा है। शायद आज उसकी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि है। आपको यदि करना है तो हनुमान जयंती, एक हनुमान जन्मोत्सव बहुत ही पावन अवसर है, उसके उपलक्ष्य में आप कर सकते हैं। चैतन्य चरितमृत पढ़ने का सुअवसर है। 350 लोगों ने लगभग अभी तक भाग लिया है इसमें। आप आज भी जो है वो इसमें भाग ले सकते हैं। कल हमने आपको बताया था, हमारा भक्त जिनका नंबर है 9960172419, इनको संपर्क करके आप अपना व्हाट्सएप के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसकी परीक्षा की सूची फिर आपको दी जाएगी। वो कब परीक्षा होगी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है इन भक्तों का, और उस परीक्षा के माध्यम से जो है वो हम लोग और जो है वो गाढ़ा चैतन्य चरितमृत के कम से कम आदि लीला का अध्ययन करेंगे, और आगे समय मिलता है कभी तो हम लोग मध्य लीला के ऊपर भी परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।